Iran Radio Podcast। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। हेनरी पुर्तगाल के पहले ऐसे प्रिंस थे जिन्हें समुद्री यात्रा और नए इलाकों को खोजने का बहुत शौक था। उन्होंने पुर्तगालियों के लिए महासागरों के रास्ते खोल दिए और अफ्रीकी तटों पर दक्षिण में एटलस महासागर की ओर बढ़कर ये साबित कर दिया कि अफ्रीका उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है जैसा उन्होंने सोचा था। हेनरी अफ्रीकी सोने, हाथी दांत और मिर्चों के दीवाने थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी इसके अलावा अफ्रीकी गुलामों में भी थी। दुनिया में प्राचीन काल से ही गुलामी का चलन था। जंगों में जो लोग कैदी बना लिए जाते थे या राहजनों के हत्थे चढ़ जाते थे, उनसे बिना किसी वेतन के काम लिया जाता था या फिर उन्हें दूसरों के हाथों बेच दिया जाता था। लेकिन जब यूरोपियों ने समुद्री यात्राएँ शुरू कीं और दूसरे महाद्वीपों का रुख किया तो गुलामी की इस प्रथा ने बिल्कुल नया रूप ले लिया। जिन इलाकों पर कब्जा किया गया था वहाँ कई तरह के संसाधन और खदानें थीं और वहाँ के विशाल मैदानी इलाके कृषि के लिए उपयुक्त थे, लेकिन इसके लिए मजदूरों की ज़रूरत होती थी। यूरोपीय लोगों को लगा कि इस काम के लिए गुलामों का इस्तेमाल सबसे अच्छा, सस्ता और आसान तरीका रहेगा। पुर्तगाली समुद्री यात्राओं में अग्रणी थे। उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों से पहले गुलामों की तिजारत शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही अन्य देश भी इस आकर्षक और मुनाफा बख्श बाजार में कूद पड़े। प्राचीन काल में दुनिया भर में गुलामी का चलन था, लेकिन 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में इसका चलन अपने चरम पर पहुँच गया था। इस दौरान गुलामों की तिजारत के कारण मानव इतिहास का सबसे बड़ा जबरन प्रवासन भी हुआ। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 7वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। अफ्रीकी कबीले एक दूसरे से लड़ते थे। जंग में जीतने वाला कबीला हारने वाले कबीले को गुलाम बना लिया करता था। कभी जीतने वाले लोग उन्हें अपने पास रख लिया करते थे और कभी दूसरों को बेच दिया करते थे। अफ्रीकी नस्ल के लोग शारीरिक रूप से मजबूत और कठिन कार्यों के लिए मशहूर थे। प्रिंस हेनरी को लगता था कि उनकी पुर्तगाल में ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने गोंकालस नाम के अपने एक नाविक को गुलामों का शिकार करने के लिए अफ्रीकी तटों पर जाने का आदेश दिया। गोंकालस ने अफ्रीका के सेनेगल तट पर लंगर डाल दिया। वहाँ मौजूद महिला और पुरुष माहीगीरों का ध्यान उधर गया। शाम ढलते ही मछुआरे अपनी झोपड़ियों में चले गए। गोंकालस ने रात होने का इंतज़ार किया। जब चारों ओर रात का घुप अंधेरा छा गया, पुर्तगाली सैनिकों ने झोपड़ियों पर धावा बोल दिया। उन्होंने कई पुरुषों की हत्या कर डाली और बच्चों, महिलाओं और कई पुरुषों को बंधक बना लिया और जहाज पर ले गए। इन गुलामों को लेकर पुर्तगाली जहाज लिस्बन की ओर रवाना हो गया। लिस्बन में प्रिंस हेनरी इन गुलामों को देखकर, जिनके गले और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थीं, बहुत खुश हुए। ये घटना 1441 की है। हेनरी गुलामों को देखकर खुश हुए थे, लेकिन राजी नहीं थे। हर साल बड़ी संख्या में अफ्रीकी गुलामों का लेन देन होता था, लेकिन उसमें पुर्तगाल की कोई भागीदारी नहीं थी। उनका प्रयास था कि अफ्रीका में गुलामों की तिजारत में उनका एकाधिकार हो जाए। उन्होंने एक बार फिर जहाज़ों को रवाना किया और अफ्रीका के एक बड़े देश मोरक्को पर कब्जा करने की योजना बनाने लगे। पुर्तगाली सिपाहियों ने मोरक्को के तटों पर उतर कर रेगिस्तान की ओर बढ़ना शुरू किया और सेउटा शहर पर कब्जा कर लिया। इस जीत से उत्साहित हेनरी रेगिस्तान में अपने सैनिकों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तभी मोरक्को के लोगों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। बड़ी संख्या में पुर्तगाली सैनिक मारे गए और जो बचे थे उन्हें बंधक बना लिया गया। हेनरी के भाग्य में क्या लिखा था? क्या इस बार उनका नंबर था कि उन्हें गुलाम बनाया जाए और फिर बेच दिया जाए? मोरक्को के लोगों ने हेनरी को पहचान लिया। उन्होंने पुर्तगालियों से समझौता करने का प्रस्ताव दिया। समझौते के मुताबिक सेउटा शहर से पीछे हटने के बदले बंधक बनाए गए पुर्तगालियों को आज़ाद कर दिया जाएगा। हेनरी को आखिर तक कैद में रखा जाएगा ताकि पुर्तगाली धोखा ना दे सकें। हेनरी ने थोड़े से बदलाव के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस बात पर सहमति बनी कि उनकी जगह उनके भाई मोरक्कन की कैद में रहेंगे ताकि वो अपने सैनिकों को पीछे हटते वक्त कमांड कर सकें। मोरक्कन ने ये शर्त स्वीकार कर ली। हेनरी को उनके सैनिकों के साथ आज़ाद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सेउटा शहर से पीछे हटने से फिर इनकार कर दिया, क्योंकि ये शहर शिकार होने वाले गुलामों को दूसरे इलाकों में स्थानांतरित करने के लिए बेहतरीन जगह थी। हेनरी ने अपने भाई के पत्रों का भी कोई जवाब नहीं दिया जिसमें उसने अपनी आज़ादी के लिए गुहार लगाई थी। प्रिंस हेनरी ने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर हमला करके 235 लोगों का शिकार किया। इस तरह से कुछ ही समय में हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर पुर्तगाल भेजा गया। अब उनकी योजना पश्चिमी अफ्रीका की ओर आगे बढ़ने की थी और वे सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। ये स्थिति करीब 5 साल जारी रही, यहाँ तक कि 1446 में 19 पुर्तगाली गुलामों के शिकार के लिए गाम्बिया नदी के तट पर पहुँच गए, लेकिन इस बार वे जंगलों में रहने वाले कबीलों के जाल में फंस गए और सभी मारे गए। इस घटना के बाद पुर्तगाली शासन ने अफ्रीकी गुलामों का शिकार करने के लिए सैनिकों को नहीं भेजने का फैसला किया। इसके बजाय उसने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया। पुर्तगालियों ने अफ्रीकी कबीलों के सरदारों से बातचीत शुरू की। उनके पास ऐसी चीज़ें थीं जिससे वे अफ्रीकी सरदारों को आकर्षित कर सकते थे। वे सरदारों को सोना, कपड़ा, घोड़े और पहाड़ी बकरियों की खाल देते थे और उसके बदले में दूसरे कबीलों के कैदियों को उनसे ले लिया करते थे। एक गुलाम को खरीदने की कीमत लगभग 1/3 औंस सोना थी, लेकिन बाजार में एक गुलाम की कीमत 3 से 6 औंस सोने के बीच थी, यानी खरीद मूल्य का 9 से 18 गुना ज़्यादा। इसके अलावा विभिन्न बाजारों में गुलामों की खरीद फरोख्त के बाद उनकी कीमतें भी कई गुना बढ़ जाती थीं। गुलामों की तिजारत के असाधारण मुनाफे के कारण पुर्तगाली व्यापारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वे दूसरे क्षेत्रों में अपना व्यापार छोड़कर मानव व्यापार में शामिल हो गए थे। कोई भी इस आकर्षक व्यवसाय के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार 1500 से 1535 के बीच लगभग 11,000 स्वतंत्र इंसानों का शिकार किया गया और उन्हें गुलाम बनाकर यूरोप के बाजारों में बेचा गया। मानव व्यापार के विस्तार के कारण कुछ वर्षों के बाद पुर्तगालियों ने पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका से हर वर्ष 3,000 गुलामों का निर्यात शुरू कर दिया। उस समय पुर्तगाल के केंद्र लिस्बन में 600 से ज़्यादा ऐसे बाजार थे जहां गुलामों को ख़रीदा और बेचा जाता था। यही नहीं, शहर की आबादी का 10वां हिस्सा गुलामों का था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो कैरेबियन सागर और क्यूबा द्वीप के आसपास के क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए बहुत मुनासिब लगे। यूरोपीय लोग जो पहले भूमध्य सागर के द्वीपों से बहुत कम चीनी प्राप्त करते थे, अब इन क्षेत्रों की अनुकूल जलवायु को देखकर बड़ी मात्रा में चीनी के व्यापार की योजना बना सकते थे। लेकिन गन्ने के खेतों में काम कौन करेगा और फिर फसलें कौन काटेगा? यूरोप वालों को सस्ते मजदूरों की बहुत ज़रूरत थी। मूल अमरीकी या रेड इंडियंस ये कार्यबल उपलब्ध करा सकते थे। हिस्पानवियों ने सबसे पहले रेड इंडियंस को गुलाम बनाने की योजना बनाई थी। वे उन्हें हथियारों के बल पर और बंदूकों से डराकर गुलाम बनाते थे, क्योंकि बंदूकें लोगों के दिलों में अजीब भय उत्पन्न करती थीं। मामूली सी गलती पर उन्हें मार दिया जाता था, ताकि बाकी लोग पूरी तरह से आज्ञा पालन करें और खेतों में बधुआ मजदूरों की तरह काम करते रहें। स्पेनिश सैनिकों के एक पादरी डलास कैसस ने अपनी डायरी में लिखा है, एक सुबह सैनिकों ने नदी के किनारे नाश्ता किया और उसके बाद पत्थर पर अपनी तलवारों को धार लगाई। फिर उन्होंने रेड इंडियंस के नंगे शरीर पर अपनी तलवारों की धार को आजमाया। उनमें से एक ने एक ही झटके में एक रेड इंडियंस के दो टुकड़े कर दिए। शैतान ने इन सैनिकों को चाकू तेज करने वाले ये पत्थर दिए थे। रेड इंडियंस सदियों से जंगलों में शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते रहे थे और उन्हें कठिन कार्यों की आदत थी। दूसरी ओर यूरोपीय अपने साथ चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां अमेरिका लेकर गए थे, जिनसे रेड इंडियंस की मौतें हो रही थीं, क्योंकि उनके शरीर इस तरह के वायरसों के आदि नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ शहरों में तो इन बीमारियों से पूरी की पूरी आबादियाँ मौत की नींद सो रही थीं। अमेरिका में रेड इंडियंस की घटती संख्या से यूरोपीय डर गए। उन्होंने अपनी हुकूमतों में से कहा कि वे अपराधियों और सजा पाने वालों को अमेरिका भेजें, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। वही पादरी जिसकी डायरी का हमने यहाँ जिक्र किया था, वो 15वीं सदी में स्पेन के राजा के दरबार में हाजिर हुआ ताकि रेड इंडियंस की गुलामी की प्रथा को बंद करा सके। पादरी ने इससे पहले देखा था कि पुर्तगाल और स्पेन की आबो हवा में अफ्रीकी गुलामों को काम करने में कोई परेशानी नहीं होती और वे अमेरिका के खेत खलियानों और खानों में भी बेहतर काम कर सकते हैं। डलास कैसस ने स्पेनिश राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि रेड इंडियंस के बजाय काले गुलामों का इस्तेमाल किया जाए और व्यापारियों और नाविकों को अफ्रीका से गुलामों को अमेरिका ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस तरह से अफ्रीकी गुलामों को जबरन अमेरिका ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया। पुर्तगाल और स्पेन के बाद तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में कूद पड़ा। जॉन हॉकिंस एक ब्रिटिश तस्कर था जो किसी भी तरह के सामान की तस्करी में उस्ताद था। तीन महाद्वीपों में यात्राओं से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि पुर्तगाली और स्पेनिश गुलामों की तिजारत से बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं। हॉकिंस ने भी अपने जहाज का रुख अफ्रीका की ओर मोड़ दिया। अफ्रीका पहुंचकर उसे पता चला कि जिन काले गुलामों को कबीलों के सरदारों से खरीदा जाता है, उन्हें कई गुना ज़्यादा कीमत पर बाजार में बेचा जाता है। उसने सोचा कि वो भी इस तरह मोटा पैसा कमा सकता है। उसे पता था कि गुलामों की खरीद फरोख्त करने वाले कबीलों के सरदारों से लेन देन करते हैं और उनके बंधकों को खरीद लेते हैं, इसलिए उसने जहाज़ में हथियार भरे और एक कबीले के समर्थन का फैसला किया। उसने अपने लड़ाकों को कबीलों के सरदार का समर्थन करने का आदेश दिया, इस शर्त के साथ कि वो लड़ाई में बंधक बनाए जाने वालों को उसे सौंप देगा। कबीले के सरदार ने शर्त स्वीकार कर ली। जंग शुरू हो गई और बंदूकधारियों और उनके समर्थक कबीले को जीत हासिल हुई। लूटमार के जरिए हाथ लगने वाला माल अफ्रीकी कबीले को मिला, लेकिन बंधकों को ब्रिटिश तस्कर के हवाले कर दिया गया। हॉकिंस ने इस योजना से बहुत कम खर्च पर 300 गुलामों का शिकार कर लिया। उसने गुलामों को स्पेनिशों को बेच दिया और अपने जहाज पर चीनी, कपास और तंबाकू लाद दिया और ब्रिटेन का रुख किया। इस तरह से खाली हाथ घर से निकलने वाला तस्कर सामान से जहाज भरकर घर लौटा। बहुत कम समय में लंदन के व्यापारियों के बीच हॉकिंस का नाम गूंजने लगा और ये नाम क्वीन एलिजाबेथ के कानों तक पहुंचा। क्वीन इससे पहले तक पुर्तगालियों और स्पेनिशों द्वारा इंसानों की तिजारत से नफरत करती थी, लेकिन जब उन्होंने इससे होने वाले फायदे का हिसाब लगाया तो हॉकिंस को अपने दरबार में तलब किया। क्वीन को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले लोगों की ज़रूरत थी और वह ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती थी। इसीलिए उन्होंने हॉकिंस को नाइट का खिताब दिया और उन्हें जीसस क्राइस्ट नामक एक बड़ा जहाज प्रदान किया ताकि वो अधिक गुलामों को ला सके। हॉकिंस ने एक बार फिर अफ्रीका का रुख किया। इस तरह से ब्रिटेन भी पुर्तगाल और स्पेन के बाद गुलामों की तिजारत में कूद पड़ा।